अनंत हूँ। इनके गुणों के दान में वर्धमान महान दिन हमारे धाम। तुमसे कहा था 10-15 पेज पढ़ने के लिए, तुम पर विश्वास करता हूँ कि तुमने अवश्य पढ़े होंगे, क्योंकि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। पेज नंबर 47 पर निकालो। ये जो छंद है ये कर्म से संन्यास लेने वाला छंद की भूमिका वाला छंद है। भूत भविष्यत वर्तमान के सभी कर्म कृत कारित अर्व अनुमोद नादि में सभी ओर से सबका कर परित्याग हृदय से वचन काय से अवलंबन लेता हूँ परम निष्कर्म भाव का। 147 भेद ये बताए थे कि मन वचन और काय इन तीन से हम यदि वो भंग बनाए तो 7 बनते हैं। फिर मन वचन काय को कृत कारित अनुमोदना से जोड़ दें, ऐसे बनाएंगे मैंने मन से किया, ऐसे इस तरह से बनाएंगे ना तो वो उससे 7 की 21 हो जाएंगे। ऐसे हम इनका करते जा मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना और भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों से हम जोड़ करके इस तरह से 49 बोल बन जाते हैं। अगले पेज पर लिखेंगे वो 48 पेज पर पंडित जगनमोहन लाल जी का कोटेशन है इसमें। अध्यात्म अमृत कलश क्या है? पंडित जगनमोहन लाल जी ने इन कलशों की टीका लिखी थी, उसे तो उसका नाम रखा था अध्यात्म अमृत कलश। तो उसमें उन्होंने दिया है कि मन वचन काय इन तीन में एक एक का पृथक पृथक ग्रहण करने से 3 भेद होते हैं और 2-2 को एक साथ लेने से 3 भेद बनते हैं और 3ों को एक साथ लेने से 1 भेद बनता है। ऐसे 7 भेद बने। कृतकार अनुमोदना से भी इसी प्रकार एक एक करके रूप में 3 भेद, द्विसंयोगी 3 भेद और 3ों मिलाकर 1 भेद, ऐसे 7 भेद बनते हैं। मन वचन काय संबंधी 7ों को कृतकार अनुमोदना संबंधी 7ों भेदों से मिला लें तो 49 भेद बनते हैं। अब इनको 49 को भूतकाल पर प्रतिक्रमण के रूप में, वर्तमान में आलोचना के रूप में और भविष्य में प्रत्याख्यान के रूप में बनाओ तो 147 प्रकार बन जाते हैं। और 147 प्रकार वो कहते हैं कि मैं इन सबसे भेद कर करके स्पष्ट है कि मैं इन कर्म का त्याग करता हूँ। कर्म चेतना का मतलब मैं परद्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं हूँ, इस बात को 147 बार जपो। ये नमोकार मंत्र की माला से ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि ये भी 147 बोल आपको बनाने पड़ेंगे। वैसे तो इसमें ही आर्य खुद अमृतचंदाचार्य ने बनाए हैं और अपन ने इसमें भी लिखे हैं और शायद इसमें भी हैं, बड़ी किताब में भी दिए हैं, तो इसलिए बने बनाए भी हैं। तो या तो आपको उसमें पढ़ना पड़ेंगे और नहीं पढ़ोगे तो एक दफे अच्छी तरह से उपयोग में इन्हें बनाना सीखना पड़ेगा और जो सीख लोगे तो अपने आप बनाते चले जाओगे। तो ये आपकी सच्ची माला होगी क्योंकि आप इसमें कुछ समझ रहे हो। आप तो पंच परमेश्वर को याद कर रहे हैं, वो हमारे इष्ट देवता हैं, उसके लिए हम उनको क्या करते हैं। और 99% लोग तो उनका भी सही स्वरूप समझते नहीं है और बस उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, यानी सही नहीं स्वरूप समझते हैं। इसका क्या प्रमाण है। तो सन 56 में 56 समझिए ना, कितने बरस हो गए, 57 बरस हो गए थे जब मैंने देशराज गुरु पूजन लिखी थी, तो उसकी जयमाला में ये बात लिखनी थी कि क्या नहीं समझते हैं हम सच्चे देवसाज गुरु को। तो उसने कहा कि सबसे पहले तो हम तुम वीत राग हो लीन स्वयं में, मैंने तुम्हारी वीतरागता को नहीं पहचाना, सबसे बड़ी गलती ये है। और इसलिए जब तुम किसी से राग द्वेष नहीं करते हो, किसी का कुछ करते तो हो ही नहीं, और तुम पूर्ण वीतरागी हो, यदि कर भी सकते होते तो क्यों करते। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें करुणानिधि समझा, ये सबसे बड़ी गलती है। करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, इसने 56 में लिखी थी। तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, सन 56 में मैं कितने वर्ष का हूंगा, 35 का जन्म है तो 21 वर्ष का हूंगा। लेकिन हम सिद्धक विधान करते थे ना, सिद्धक विधान में सब उसने आया है ना कि भगवान करुणा नहीं है, करुणा से रहत अत्यंत निर्दय है, दया से रहते हैं। तो दया से रहते हैं ये बात तो हम पूज्य गुरुदेव श्री से मिलने के पहले ही जानते थे, और पूजन भी उनसे मिलने के पहले ही लिखी गई थी। जब उन्हें मिले तब तो उन्हें हम भेंट की थी। मेरे कहने का आपसे है कि इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसमें अपन ये बात कहें, कितनी बड़ी भूल है ना कि करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा। भगवान भरोसे पड़ा रहा ये फ्रेज है, ये हिंदी का सूक्ति है। क्या भरपूर सुखी कर दोगे तुम ते सोचे सन्मुख करारा, अगर तुम कर दोगे सुखी तो सबसे पहली गलती तो ये होगी। और फिर दूसरी गलती क्या हुई कि तुम सर्वज्ञ हो और सब कुछ जानते हो, और जो तुम्हारे ज्ञान में आया है वो सुनिश्चित नहीं होता तो ज्ञान में आ नहीं सकता। अभी तो हुआ नहीं है ना, अब जब होगा तब जानेंगे। तो कहते वो नक्की है, तो उसमें भी ये शब्द आया है कि जो होना है सो निश्चित है, पर केवल ज्ञानी ने गाया है। तो दो चीजें नहीं पहचानी, कौन कौन सी, वीतरागता और सर्वज्ञता। और अपने देव का स्वरूप क्या है, जो वीतरागी हो सर्वज्ञ हो हितोपदेशी हो, जो सच्चा देव कहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में ही लिखा है। तो मोक्ष प्रकाशक का मंगलाचरण तो पढ़ा ही था ना, मैंने ये बात कहने का मतलब इतनी स्पष्ट और बड़ी बात भूल है कि हरेक के ख्याल में आनी ही चाहिए। तो उसके साथ हमने ये जुड़ा हुआ है, फिर भगवान को याद करना, भगवान हमारा ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, उनकी ये बात बता देनी। इसमें तो आप 147 बार ये कहेंगे कि मैं मन से नहीं किया, मैं कर्म मन से नहीं करना, मैं वचन से नहीं करना, काय से नहीं करना, है मन वचन से नहीं करना, वचन काय से नहीं करना, ऐसे मैं खुद नहीं करना, कराना नहीं, भूतकाल में किए हूं तो वो मिथ्या, वो मैं भविष्य में भी नहीं करने का संकल्प मेरे जीवन में हो, वर्तमान में भी जो हो रहा है उसका भी मैं ज्ञाता दृष्टा बनूं। तो इतनी बार एक तरीके से आप इस बात को दोहराएंगे और रोजाना सुबह शाम दोहराएं भी, तो अंदर कुछ घुसेगा ही ना, क्योंकि तो ऐसा गद्य है कि जो आप खुद बना के बोल रहे हैं तो उसका अर्थ आपकी समझ में नहीं आए, ये कैसे संभव है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि देखो मैं नवोकार मंत्र को छोड़कर ये करने को कह रहा हूं, ये खुद ही इसमें लिखा है, ये प्रतिक्रमण है, हमें रोज ना करना चाहिए, ये आलोचना हमें करना चाहिए, प्रत्याख्यान करना चाहिए। ये तो अपने कुंड आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं। तो एक तो ये 47 प्रकार का ये है, और देखो इसमें कुछ ये बोल बनाए हैं, देखो ये मैंने पूर्व में मन वचन का से जो दुष्कृत किया कराया और अनुमोदन किया वह मिथ्या हो। मैंने पूर्व में मन वचन का से जो दुष्कृत किया और कराया वह मिथ्या हो। मैंने पूर्व में मन वचन का से जो दुष्कृत किया और अनुमोदन किया वह मिथ्या हो। तो इस तरह से बराबर बने हुए हैं बोल, है ना। फिर एक प्रतिक्रमण कल्प, आलोचना कल्प और प्रत्याख्यान कल्प, ऐसे 49 मिला करके ये फिर 49 के 49 यहां बना करके दिए हुए हैं। जो मैंने आप पर विश्वास किया कि आपने पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हों तो अब पढ़ लेना, क्योंकि यदि एक दफे तो पढ़ना, एक दफे नहीं, एक प्रतिदिन पढ़ने के हैं। मैं बोला ना पूज्य गुरुदेव श्री 47 शक्तियां 47 नए रोजाना सुबह उठ के जैसे अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ऐसा पाठ बोलते थे। अब कोई कभी किसी दूसरे का सुना कि वो ऐसा ऐसा बोलता था कैसे मेरे अंदर। अब एक 49 से बोल आए और फिर उन्होंने एक छंद दिया, जो अपन ने छंद पढ़े थे ना कल, कितने पढ़े थे, 8-10 छंद पढ़े थे, वे सारे छंद इनको लिखा, फिर ऐसा फिर बोल दिए, 49 बोल लिखे, फिर एक छंद लिखा, फिर 49 बोल लिखे, फिर एक छंद लिखा। तो ऐसे उन्होंने कर्म माने कर्म में चेतना से अपने को छुड़ाया और फिर कर्मफल चेतना में, कर्मफल चेतना में क्या किया उन्होंने, कर्मफल चेतना में किया कि 148 प्रकार की जो कर्म की प्रकृतियां हैं और 8 कर्म मूल प्रकृतियां और 148 उत्तर प्रकृतियां, इतनी बार 156 हो गए अपन मिला के, इतनी बार जब मैं इस कर्म के फल को नहीं चाहता, मैं इस कर्म के फल को नहीं चाहता, मैं इस कर्म के फल को नहीं चाहता, मैंने उसको कर्म फल चेतना से वो इस तरह से निषेध किए। तो ये सारा प्रकरण और वो छंद मिला करके, ये जो वहां अपने इकट्ठे छंद है ना, तो मैंने इकट्ठे बुलवाए थे और यहां ये बीच बीच में आए हैं। देखो ये जो पढ़ लो, मुझे पढ़ना नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूं, आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से। पेज नंबर 71 पर निकालो आप। ग्रंथ के आरंभ में ही कहा था कि हमारे ना 71 पेज पर नीचे की 5-6 पंक्तियां, हमारे जीवन में एक मोह ही नाचता है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का होना ही मोह का नृत्य है और इन दोनों का अभाव होकर ज्ञान चेतना का होना ये ज्ञान का नृत्य है। मोह अनादिकाल से मोह नाचता है, ऐसा करते ऐसा शब्द और एक ज्ञान को नचाओ, जो मोह नाचा था अब उसे ज्ञान का नचाओ। ये हमने कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि को ऐसे अजपा जाप जैसा हमारे अंदर चलता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे ये भोगना पड़ा, मैं कितनी कितनी तकलीफ उठाई, तुम्हें क्या पता, पर ऐसी बात नहीं है, मैंने आनंद भी बहुत लिया, मस्ती से रहा, ऐसा किया ऐसा किया, ये ऐसी भावना जो निरंतर चलती है, इसका नाम है मोह का निरंतर नाचना। और ये सब कल्पना लोक की उड़ाने हैं, वे कहते न इसने आज तक कुछ किया है पर में और न आज तक उसको भोगा है, तब तो उसे अज्ञान चेतना कहते हैं। यदि किया होता और भोगा होता तो फिर उसे अज्ञान चेतना क्यों होते, फिर तो ज्ञान ही कहते, किया है तो बोल रहे करा है और भोगा है तो बोल रहे भोगा है, लेकिन किया नहीं है, भोगा नहीं है, इसकी भावना के अनुसार इस जगत में कुछ भी हुआ नहीं है, फिर भी इनका कर्ता भोक्ता बना हुआ है। अब उस कर्ता भोक्ता की अंदर में इतनी जुगड़दार लटाई है कि सोते में जागते में वोई वोई चलती है, तो कहते अब उससे बचने के लिए कम से कम उतनी तो उल्टी लटाई होनी चाहिए ना। तो इसलिए कहते हैं तुम मोह की नृत्य को छोड़ो और अब ज्ञान को नचाओ। और ज्ञान का नचाना क्या है? पर ये जो पढ़ रहे हैं अपन, इसका नाम ज्ञान का नचाना है। मुझे नचाना क्यों बोल रहे हैं? कल मैंने कहा था याद हो तो कि अपन स्वाध्याय करते हैं तो नित्य नई बात आती है, हर पंक्ति में नई आती है। और यदि दो चार पेज बाद द्वारा आ जाए तो मेरी तो आ गया, ये तो आ गया। यदि कोई वक्ता बोले तो ये तो आप कल कह चुके थे। यानी जो प्रवचन में स्वाध्याय में जो रिपीटेशन एक तरह से दोष के रूप में देखा जाता है, नृत्य में और गाने में वो गुण के रूप में देखा जाता है। सत्य विधान में लिखा है कि किंतु भक्ति में नहीं पुनरुक्त भ्राई, तो पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता। तो अब क्या होता है कि जो हमने स्वाध्याय करके, स्वाध्याय में बांटना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, चिंतन आम करके, फिर हम जो पक्के निर्णय पर पहुंच चुके, अब उस निर्णय को हम बार बार रिपीट करते हैं। क्यों? कि हमने इतनी मेहनत करके यहां पहुंचे हैं तो अब एक चीज भूल ना जाए, बस वो जो रिपीटेशन है उसका नाम संयम है, उसका नाम चारित्र है। जो हमने ज्ञान में सच्चा निर्णय किया है, अब उसी को तो इतनी बार उन्होंने किसी बहाने से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कायत से, अनुमोदना से किया, कराया, इस तरह से हमने बार 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 उसी बात को कहा, इस तरह से हमने ज्ञान चेतना को नचाया और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को हटाया। तो जब इस ग्रंथ के आरंभ में ही कहा था कि हमारे जीवन में एक मोह ही नाचता है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का होना ही मोह का नृत्य है, और इन दोनों का अभाव होकर ज्ञान चेतना का होना ही ज्ञान का नृत्य है। अब इसमें एकादश बता दें, अजपा जाप। कुछ लोग अजैन साधुओं को आपने ये देखा होगा कि वे हाथ में एक माला लिए रहते हैं और एक थैली होती है कपड़े की, और उस थैली में वो माला डाल के और हाथ डाल के और यहां बांध लेते हैं और वो माला को जपते रहते हैं। वो क्यों बांध लेते थैली को? क्योंकि वो कभी माला हाथ से छूट गई तो नीचे गिर जाएगी तो वो अपमान होगा ना उसका, तो वो गिरे तो कम से कम उस थैली में ही तो गिरेगी। वो थैली कोई कोई थैली से कोई बहुत बड़ा कुछ होता है ऐसा नहीं है। वो तो काय के लिए बांधी कि वो माला गिर नहीं जाए, क्योंकि उनका उपयोग तो उसमें रहता नहीं, तो बार बार उपयोग हटना है तो कभी ना कभी तो छूटना ही है ना वो माला हाथ से। और फिर वो राम 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 ऐसा बोलते रहते हैं और माला की गुनिया फेरते रहते हैं। तो कभी कभी वो मुंह से बोलना बंद हो जाता है, पहले धीरे 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 हो जाता है तो बिल्कुल बंद हो जाता है, और उंगलियां चलती रहती हैं, कभी उंगलियां बंद हो जाती हैं। तो वो कहते हैं चाहे भले ही उंगलियां बंद हो जाए और चाहे वो मन में रतन बंद हो जाए, वाणी से निकलना बंद हो जाए, मन वचन कहा जो तीनों से ही, लेकिन वो अंदर आत्मा में अजपा जाप चलता रहता है, वो ही धुन अंदर में लगी रहती है। इसलिए वो कहते हैं कि जब हमने नहीं किया, कले माला नहीं फेर रहे, मुंह से नहीं बोल रहे, तब भी वो हमारा जाप चल रहा है। अब ये यहां ये कह रहे हैं कि हमको ऐसा अजपा जाप करना है, करना है क्या? हर ज्ञानी को होता ही है कि जैसी ये धारणा मैं करूं करूं की थी तो किया किया की थी, अब ऐसे नहीं करूं नहीं किया की, करता ही नहीं है आत्मा, ऐसी ज्ञान की धारा निरंतर उपयोग के रूप में बहे और उपयोग के रूप में नहीं बहे तो लब्धि के रूप में बहे, श्रद्धा के लेवल पर बहे, तो उससे उसका नाम है ज्ञान चेतना का नाचना नचाना। वो अजपा जाप अंदर में चलना चाहिए, चलना चाहिए नहीं, चलता है। शास्त्रों में ये आता है कि मुनिराज छठवा साधना गुणस्थान अंतर्मुहूर्त में होता रहता है, वो अंतर्मुहूर्त कोई 48 मिनट का ही होता हो ऐसा नहीं है, मतलब बहुत छोटा छोटा अंतर्मुहूर्त भी होता है। तो जब विहार कर रहे तब कैसे चलता होगा, जब भी आहार कर रहे तब कैसे चलता होगा, जब प्रवचन कर रहे तब कैसे चलता होगा, जब सांस लिख रहे तब कैसे चलता होगा। तो लिखा है कि चलता है। अब उसके अंदर में ज्ञान की धारा में ऐसी बात चलती रहती है, लोग उसको सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो फिर बाहर से कहता है। मैंने एक मंगल आदमी को ऐसा कहते सुना था कि हमारा क्या है, हम पैर उठाते हैं तो छठवां अनुष्ठान होता है, तो उस पैर को ऐसा आगे रखते हैं तो सातवां हो जाता है। ऐसे ऐसे पैर रखते हैं ना, अपन चलते हैं ना, ऐसे ऐसे पैर चलते हैं ना रखने से। मैंने वो कहीं पढ़ा होगा, उनने अपनी तरह से नहीं बोल रहे थे, मेरे कहने का मतलब ये है कि उस चलने के साथ में भी छठवां सातवां होता रहता है, इतना इतना जल्दी, मैंने अंतर्मुहूर्त इतना छोटा भी होता है, लेकिन उसका जो अर्थ यही है कि वो धारा निरंतर बहती रहती है। तो वो धारा मैंने जो पुरुषार्थ रुचि का जोर, उस रुचि के जोर से वो काम होता रहता है। टोडरमल जी साहब ने एक प्रश्न खड़ा किया कि जो है ना सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद बेहोजा की सूत्र तत्वा सूत्र का, और गोमर साहब ने भी दो गाथाएं ऐसी हैं जिनकी असंख्य गुण नजरा, तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी नजरा होती है, तो असंख्यात गुणी किससे, जब गुणी बोलते हैं तो फिर गुणनफल के लिए कोई मूल वो चाहिए ना, संख्या। जब हम इतनी गुणी ऐसा बोलते हैं तो उनमें गुणनफल के लिए संख्या चाहिए ना, तो कहा गया भद्रमच्छा दृष्टि ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो इसका मतलब यह है कि भद्रमच्छा दृष्टि के भी निर्जरा होती है, मैंने सम्य दर्शन के बिना भी निर्जरा होती है सिद्ध। अब वो लोग कुछ लोग जो अपने यहां हैं जो शुभ भाव से निर्जरा मानते हैं, शुभ भाव और विशुद्ध परिणाम लगभग एक ही है, विशुद्ध माने कोई शुद्ध से ज्यादा अच्छे नहीं, शुद्ध माने तो शुद्ध और विशुद्ध माने शुभ, तो उनसे होती है। तो वो कहते देखो ये लिखा ना, सुरन जी भी मानते हैं और ये भी मानते हैं और वो भी मानते हैं कि वहां पर वो तो है नहीं शुद्ध उपयोग और वहां पर वो निर्जरा हो रही है, वहां निर्जरा स्थापित हो नहीं होगी तो असंख्य गुणी नहीं बनती है। तो उन्होंने कहा उसके लिए होती है, तो उन्होंने कहा होती है। अब गुरुदेव श्री से पूछा गया इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा वहां जो शुद्ध भाव होता है, शुभ भाव होता है उससे नहीं होता है, लेकिन जो अपना त्रिकालीधर भगवान आत्मा है और आगम से गुरु के मुख से जो हमने वो निर्णय किया कि यही मैं हूं, तो उसमें जो तीव्र हमारी रुचि हुई वो उसके रुचि के जोर से वो निर्जरा होती है। मैंने त्रिकालीधर भगवान आत्मा का रुचि का जो जोर है उससे निर्जरा होती है और उससे असंख्यात गुणी होती है। अब ये समस्या कोई गुरुदेव की और अकेले उनकी नहीं थी, टोडरमल जी की, उसके पैसे बनासी दास के समय, पांडे राजमल जी के समय भी ये बहुत चर्चा का विषय है रहा। तो जो परमार्थ वचन का है बनासी दास जी की, तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा कि उस विशुद्धता में भी शुद्धता का अंश रहता है, जो कौन कर्ण लब्धि के काल में जब आत्मसन्मुख परिणाम में उस विशुद्धता में शुद्धता का अंश रहता है, जिसे गुरुदेव रुचि का जोर कह रहे हैं और पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि वो वहां रहती है, तो वो कहते हैं विशुद्धता में शुद्धता का अंश रहता है और काफी कोशिश करके उनने समझाया, और समझाने के बाद में अंत में जो एक वाक्य लिखा, उस वाक्य में उनकी जो अंदर की भावना है कि मैं भी समझाना चाहते हैं और सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा है, ये स्पष्ट फीलिंग कर रहे वो, तो उनने कहा हे प्रश्न वाले, जैसेगा उसमें ये भाषा चलती होगी, तूने विशुद्धता, हमने तुझे विशुद्धता में शुद्धता का अंश होता है ये बताया, तो तेरी समझ में आया कि नहीं? क्या हे प्रश्न वाले, विशुद्धता में शुद्धता का अंश की बात तेरी समझ में आई कि नहीं आई? आई तो श्याबास, आई तो श्याबास, और नहीं तो तेरी बुद्धि प्रमाण हम क्या करें, बस खत्म, और चल गए आगे बढ़ गए। अब तेरी बुद्धि में ज्ञान में किए में जो आना होगा वो आया, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कोई समझाने से किसी के समझ में नहीं आता, उसके समझने से ही समझ में आता है। असली समस्या ये है कि जो एक पक्ष है वो ये सिद्ध करना चाहता है कि स्वभाव से शुद्ध भाव होता है, और दूसरा पक्ष का कहना यह है कि शुद्ध शुभ भाव तो उसका विरोधी है, तो उससे वो कैसे हो सकता है, किसी भी राग से वितरागता कैसे हो सकती है, राग से वितरागता, राग कैसे वितरागता कारण होता है। तो वो कहते अशुभ भाव से सीधा शुद्ध भाव नहीं होता, शुभ में आने के बाद ही होता है। तो वो कहते हैं कि वो ये तर्क इसलिए शुद्ध से होता है, तो उनके सामने तर्क देते हैं कि उस शुभ का भी अभाव करता हुआ होता है तो शुभ को रखकर होता है, तो शुभ का अभाव करता हुआ होता है तो जो जिसका अभाव करना जरूरी है इसे प्राप्त करने के लिए उसे कारण कैसे माना जा सकता है। लेकिन आगम में अभावात्मक कारण की भी चर्चा है ना, उन्हें भी कहा गया है ना, इसलिए वो आगम प्रमाण और झगड़ा चिंता चलता ही रहेगा। और वो जो कहा उन्होंने कि जिसकी समझ में आना होगा, जिसकी काललब्धि पकी होगी, संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया होगा, और उसकी समझ में आएगा, और जिसकी नहीं आई होगी वो ऐसे ही चलता रहेगा। यहां जो प्रेरणा दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि इसका नाम क्या है, ज्ञान का नृत्य। तो नृत्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक ही बात को रिपीट कर, नृत्य में क्या होता है कि एक सी ही क्रिया होती है और उसको ही बार बार रिपीट होता है, उसको बार बार रिपीट होता है। जैसे एक छंद बोलेंगे तो एक छंद में वो जिस तरह हाथ पैर मटकाएगा जो कुछ भी होगा, फिर जब दूसरा अंतरा आएगा तो बिल्कुल उसी तरह का द्वारा भी करेगा, फिर अचड़ी आएगी जो भी आता तो फिर उसी तरह की क्रिया उसमें भी होगी, तो बार बार बिल्कुल हूबहू क्रिया होती है, तो उसको वे नाचना कहते हैं। क्या तो वो कहते हैं कि अभी तुम नया नया मत सीखो स्वाध्याय जैसा, अभी तो तुम ज्ञान ने जो निर्णय कर लिया है तो उसका नाम है ज्ञान का नृत्य, अब तुम उसको नचाओ, और वो उसकी सच्चाई का भरोसा, और अंदर में वो भगवान आत्मा विराजमान है उसका भरोसा, और उसमें अपनेपन का भरोसा, ये उस बात इस बात के लिए उसे निरंतर प्रेरित करता है। इसलिए समझ लो सम्मदर्शन होने के बाद में सम्यक दृष्टि के भी वो धारा निरंतर बहती रहती है, लेकिन मुनिराजों के तो इतनी जोरदार बहती है कि वो हर अंतर्मूर्त में एकदम अंदर चले जाते, हर अंदर मूर्ण अंदर चले जाते, माने वो एकदम स्पष्ट परिलक्षित होती है। और इनके गृहस्थों में जितनी जितनी पुरानी भूमिका में होते हैं ना, पिछली पिछली में, वो उतनी उतनी देर में आती है, उतनी मंद होती है उतना, लेकिन होती है। और इसलिए कहते जब तक लोगों के सामने पकड़ने में नहीं आ जाए तब तक उसको नहीं होना कहने में फायदा है, नहीं तो फिर सिद्ध करते, फिर सिद्ध करते हैं दिखाई देता नहीं, फिर भी कहता है चक्रवर्ती हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, चक्र चला रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बाल बच्चे हो रहे हैं, ये हो रहा है, 24 घंटे समस्याओं में उलझे हैं, और वो धारा कैसे बह रही, कैसे बह रही, कैसे बह रही है, ऐसा कैसे होता है। तो वो बाद में 1000 श्रृंखलाएं सुनी होंगी, इसलिए उन्होंने कह दी चरित्र मोहे बस लिए सुना संज्ञा, हम तो उस चारित्र को चारित्र मानेंगे कि दूध कहते ना वो माथे पर चढ़कर बोले, माथे पर चढ़कर के बोले का मतलब क्या है कि सारे दुनिया को दिखाई दे जाए। देखो एक बात मैं आपसे कहता हूं, ये जो आज हमारी समस्या खड़ी हो रही है कि ये सामने वाला सामने दृष्टि है कि नहीं है, अब वो कोई कहता है और कोई कहता नहीं है, अब वो जो भी कहता हो, लेकिन दो तरह के लोग तो उसके कुछ भगत कुछ विरोधी होते ही है ना। लेकिन ऐसी समस्या कभी नन्द दिगंबर मुनिराज के बारे में हुई क्यों? जब वो ऐसा जादू है जो माथे पर चढ़ के बोल रहा है, उन्होंने जो भेष धारण कर लिया, लेकिन हमने तो नहीं किया, हमने हमारा खत्म हो गया। अरे तुम मैं नहीं कही तो तुमने भेष कैसे ले लिया? ये तुम्हारा तो भेष चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि तुमने व्रत लिए हैं, अनुव्रत लिए हैं, तो वो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं जादू वो है जो सिर पर चढ़कर बोले। मतलब तुम्हारा तो ये भेष ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तुम अपने को सतमें सातवें गुणस्थान वाला मानते हो क्या? हम तो कह रहे हैं कि हमें नहीं है, तुम्हारे अब क्या करें, तुम कैसे कह रहे हो? अब आगम भगवान ने तो नहीं कहा, आगम में तो ये बात नहीं है, है ना, समझ रहे ना? ऐसी दोना पट्टी मतलब जो समझते नहीं है, यानी वो धारण नहीं करना, सन्ना दर्शन के बिना व्रत धारण नहीं करना कितना आवश्यक अंग है। लेकिन फिर भी लोग कर लेते हैं, और अभी से नहीं पहले से भी करते रहे, और टोडरमल जी के सामने भी समस्या थी, जबरदस्त समस्या थी, तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री कहा था कि मैं ऐसा ही लिख दिया कि कभी व्रत सम्मक दर्शन के बाद होते हैं और कभी कोई पहले ले लेता है, तो बाद में सम्मान हो जाता है, तो समझने के बाद हो जाते हैं। लेकिन वो ले लेता है तो वे सही थोड़ी है, तो रमन जी तो बता रहे कि ऐसा जगत में होता है, लेकिन वो जगत वो जो होता है वो सही होता है ये थोड़ी कह रहे। मान लो एक आदमी ने व्रत ले लिए, जो प्रतिज्ञाएं ले ली, मुनि पद धारण कर लिया, अनुव्रत ले लिए, तो अब जब कोई भी बताएगा समझाएगा तो उसे ये थोड़ी कहेगा तुम इसे छोड़ दे, वो तो कहेगा सम्मान के बिना नहीं होता, तुम सम्मान दर्शन कर, उपदेश ऐसे ही देगा ना। और यदि मान लो कि वो उसने निर्णय भी कर लिया जो होते नहीं है मुझे छोड़ देना चाहिए, तो अब क्या करे? अभी कपड़ा मांगे किसी से, पहले कपड़ा पहने, तो वो उस दिशा में बढ़े जो सन्मा दर्शन के लिए सीधा पुरुषार्थ करना है वो उसमें लगे। अब वो तो मान लीजिए पहले तो सन्मा दर्शन के बाद ही लिया, अब शास्त्र में दिया जाता ना करुणा नियोग में कि फिर से मिथ्या तदावदय आ गया और मिथ्या दृष्टि हो गया, तो फिर वो खेल हो जाएगा ना कि तो एक घंटे बाद फिर कपड़ा पहने, एक घंटे बाद वो मिथ्या चला गया, उग्र पुरुषार्थ किया तो अंदर में चला गया, तो फिर फेंके तो बाहर में मजाक बन के रह जाएगा ना। तो टोडरमल जी ने उसको कहा कि अब ऐसा हो गया तो चक्कर में फिर पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है तुम चल। जैसे कि उदाहरण के लिए कांजी स्वामी की बात करता हूं मैं, कि उन्होंने स्तनकवासी का वेश धारण करके साधु बन गए वो। अब जब उनको ये पता चला कि भई ये सही वेश नहीं है, ये साधु का वेश नहीं है और ये बिल्कुल गलत बात है, और ऐसी स्थिति में रहना जगत को धोखा देना है, भीष्म की स्थिति में रहना, तो मेरे से धोखा का काम बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, वास्तव में तो एक मिनट भी चलाने लायक नहीं है। लेकिन जो भी कमजोरी रही अंदर में, जो भी रहा, उसकी वजह से 13 वर्ष तक चला और फिर उन्होंने हटा दिया। तो हटा दिया तो मुहे की पट्टी हटा दी, तो अब वो जो सारा बेस हटाना चाहिए था ना, जो बेस उन्होंने पहना, आखिर जब साधु बने थे तो साधु के लिए अकेला उन्होंने मुंह पे पट्टी थोड़ी लगाई थी, थाना वासी में लगाते हैं, श्वेतांबर में तो वो ही नहीं लगाते हैं। वो जो लुंगी लगाई थी, वो चंद्रा उड़ा था, वो जो कोई कमंडर वमंडर सखाती थी, ये जो रखे थे, इतनी चीजें रखी थी, भोजन मांग के लाते थे, करते थे, तो आपको जान रहा हूं कि इन्होंने मुंह पत्ती फेंकने के बाद भी बहुत दिन तक भोजन ऐसे ही लेके मांग के लाते थे, वही करते थे। अब उनने तो वो चिन्ह छोड़ दिया, उनकी समझ में यही आया कि ये श्वेतांबर बनेगा, धान के बाली बनेगा, चिन्ह है, अब मैंने छोड़ दिया। अब वे कहेंगे मैं साधु बन गया, अब कुनो कोई विषय कसाय का तो ऐसा जोर था नहीं कि जिसकी जगह वे कपड़े पहन के भैया शौक से रखे रह ले, शादी विवाह कह रहे हो तो ईमानदारी कर लें, तो वो प्रवृत्ति में मैं क्यों जाऊं। फिर धीरे धीरे जब अपने दिगंबर लोग मिले, जो विद्वान लोग मिले, उन्होंने समझाया कि जैसा मोहपत्ती ये चिन्ह है, ऐसे ही चिन्ह ये भी साधुता का है, उस संप्रदाय की साधुता के चिन्ह है ये, तो क्या करना चाहिए कि नहीं नहीं जी आप में खाना नहीं ला सकते हो, अरे आप तो अब गृहस्थ ही, आप कह रहे हम तो श्रावक बन गए, श्रावक बन गए तो आप तो निमंत्रण से जाकर के वहां खाना खा सकते हो, खाली में ऐसा थोड़ी कि देखो मैं मुझे ऐसे करोगे, लेकिन ये तो फिर मैं वो छोड़ा। ऐसी ऐसी बहुत सी जो प्रवृत्ति थी श्वेतांबरत्व की, वो उसके कई वर्षों में धीरे धीरे छूटी है। एक बात मैं और प्रेम मरने की बता रहा हूं, इतिहास की जानकारी रहे, कि जब सबसे पहले सोनगढ़ में मंदिर बनाया और मूर्ति भगवान विराजमान किए, तो ये ऊंट रंगे थे, लाल रंग से, ऐसे ऐसे रंग से, ऐसे रंगे थे। तो वो जो जब जो लोग गए विद्वान लोग यहां से, तो उन्होंने ये क्या, तो उन्होंने कहा कि शास्त्र में लिखा है, दिगंबर शास्त्रों में लिखा है। दिगंबर शास्त्रों में कहां लिखा है, तो वो जो कोई पूजन है, लाल मुख मुख नयन श्याम अरु सेत है, ऐसी छवि देत है, ऐसा ऐसी पंक्ति है ना, और प्रतिष्ठा पाद में भी लिखा, तो देखो ये लिखा है इसलिए हमने किया है। तो फिर जगनमोहन लाल जी वगैरह ने समझाया कि क्या लिखा, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ तो ये है कि मूर्ति बनाने वाला भगवान की मूर्ति बनाए, तो वो का नाप है कि ये जो ओंठ है ना, ये कितने बनाए। यदि मूर्ति 5 फुट की है, जैसे अपन 5 फुट के हैं ना, तो ये ओंठ का हिस्सा कितना होगा। यदि 50 फुट की है तो कितना होगा, तो वो कहते हैं कि ये जो लाल हिस्सा होता है इसका नाप इतना ओंठ का, ये ओंठ मतलब इतने, मुंह इतने, नैन इतने, तो वो उन्होंने अलग कलर से बताया। वो ऐसा मानते हैं कि नेचुरल होते हैं ये, आजकल तो नकली महिलाएं भी नकली करते हैं, लेकिन ये नेचुरल ऐसा नहीं है, लेकिन नेचुरल यहां से इसका कलर अलग होता है। तो ये कलर बताया है कि ये ओंठ कितने बनाए, उंगलियां कितने बनाए, नाखून कितने बनाए, ये नाखून रंग लो महिलाओं जैसे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नाखून, यदि ये हाथ इतना लंबा हो तो नाखून कितना होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हाथ तो बनाए 10 गज का और नाखून बना दें इतना सा, उसी अनुपात में बनाना पड़ेगा ना, तो वो नाप प्रतिष्ठा पाठ में लिखा और उसका उनने नेचुरल वर्णन किया कि वो श्याम है अभी सेत है, माने ये हिस्सा श्याम है, ये सेत है, मतलब वो ऐसा बताया है कि ऐसा तुम करो, ऐसा नहीं है। तब उनकी समझ में आया तो उन्होंने फिर वो बाद में बताया। मैं ये बात सब इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब जिस संप्रदाय में पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं। तुम गुजरात में पैदा होगे तो खाके खाने लगोगे जन्म से, तुम्हें ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं कि कोई हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। और यदि तुम हिंदी प्रांत में पैदा होगे तो जब बासी रोटी वो छू नहीं सकते, क्या बात करते हो, ऐसा होता क्या नहीं होता है मेरे कहने का मतलब। तो ये ऐसे वो जो जातिगत प्रांतगत जो संस्कार होते हैं वे धीरे धीरे जाते हैं, तो वो बुद्धि पूर्वक उसके रहने से वो घृत मिथ्या दृष्टि रहे ऐसा नहीं है। लेकिन यदि वो मुंह पत्ती का वो समझते थे तो मुंह पट्टी नहीं निकालते तो रहते। मेरा मतलब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐसे तो ऊपर से उपसर्ग कुछ भी हो जाए। तो ये जो वर्णन शास्त्रों में होता है वो सब इस बात का प्रतीक है। सबने दिगंबर शास्त्रों में ये कहा कि अद्वैत शुद्धोप योग वो असली चीज वो रहती है, वो अंदर में धारा बहुत बारीक ज्ञानी सम्यक दृष्टि की भी बनती रहती है। अभी देखो अपने थोड़ा प्रयोगात्मक दृष्टि से बताता हूं। जब जैसे मैं कोई चीज लिखता हूं तो मैं ऑफिस में वही कागज किताबें रखता हूं, घर पे भी वही किताबें रखता हूं, दो तीन जगह वो किताबें रखता हूं। अब कुछ नहीं होती हैं ज्यादा और वो कुछ का, तो मैं ऑफिस जाता हूं तो अपने साथ कुछ ले जाता हूं, जो लिखा है वो अधूरा वो भी ले जाता हूं। फिर ऑफिस से घर आता हूं खाना खाने तो घर ले जाता हूं। जब भले ही मैं दो घंटे बाद जाऊं और एक मिनट भी मुझे देखने को नहीं मिले, लेकिन मैं लाता हूं साथ में कि मैं जब तक करूंगा देख के करूंगा। फिर वहां से जाता हूं तो वहां रखता हूं, फिर वहां से रात में जाता हूं तो रात में यहां रखता हूं, फिर वहां ऑफिस जाता हूं तो वहां बाहर बैठता हूं तो बाहर रखता हूं। तो लोग पागल हो, इन्हें कुछ तो पड़ा नहीं। जो प्यून टायर के लोग होते हैं, एक घंटे से मेरे पे सब सजवाया लगवाया और फिर कभी उठाओ तो वहां रख दो, यहां वहां उनको दिखते हैं कि किले खुटे हैं। विद्वान लोग जो बड़े लोग ऐसे थोड़े क्रैक होते हैं क्या, लेकिन वो सचमुच वो अंदर एक धारा बहती रहती है। वो जो कृष्ण दिमाग में चलता रहता है ना, जैसे जैसे मान लो अपन 16 ग्राम भावना की बात करी और उसमें सूत्र पर अपन लिख रहे, तो एक दिन तक दो दिन तक वो अंदर बहता रहता है। तो अभी वो किताबें भी साथ में डोलती हैं, वो विचार भी डोलता है, खाने खाते वक्त भी डोलता है, घूमते वक्त भी डोलता है। तो उससे अंदाज लगता है कि ऐसे ही जिनके प्रकृति धूम में जिनकी इतनी पवित्र रुचि है तो उनके क्यों नहीं रह सकता है। पर अकेले इसी क्षेत्र में नहीं, जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों में भी ऐसा रहता है, वे भी ऐसा ही करते रहते हैं, उनके अंदर वो धारा बहती रहती है। वे जो प्रयोग कर रहे होते हैं और बीच में खाना खाने आ जाते हैं घर पे, तो बराबर ज्ञान की धारा चलती रहती है। कभी रोटी में भूल जाते हैं, कभी दाल नहीं खाते हैं, कभी पापड़ रख लेते हैं, पापड़ खाते ही नहीं है, कभी तीन पापड़ खा जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है उन्हें पता ही नहीं क्या खा गए क्या नहीं खा गए, वो तो उस धुन में रहते हैं। एक वैज्ञानिक का ऐसा सुना होगा तुमने कि वो स्नान घर में नहा रहा था, तो अंग्रेजों में तो पहले से ही स्नान घर बंद होता है पैक और नंगे होकर उसमें नहाते हैं, उसको भी ऐसा पता नहीं समझते हैं कहना ही ना। अपने हिन्दुस्तान लोग स्नान घर थे ही नहीं, सबको खुले मैदान पर सड़क पर नहाना पड़ता था, तो फिर नंगे कैसे हो सकते थे। तो वो वहां नहा रहा था और वो जिस समस्या के सुलझाने में उलझा हुआ था, महीनों से जिस प्रश्न का जवाब उसे नहीं मिल रहा था, अचानक उसके उस समस्या का समाधान उसे आया तो उसको इतनी प्रसन्नता हुई कि एकदम दौड़ता हुआ भागा और राजा के दरबार में पहुंचा कि मेरे हो गया समाधान हो गया। और वो नंगा, उसको वो भूल गया कि मैं निशान घर के बाहर निकल रहा हूं, राज दरबार में जा रहा हूं, राजा में राज्यसभा लगी थी, सारे सब बैठे थे और वो कहे कि ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो वो कह रहा था नहीं, वो तो ठीक है लेकिन संख्या जीत है, कपड़ा तो पहनो, कपड़ा तो पहनो। तो वो क्या कहता है, चुप रहो, तेरे कपड़ों की लग रही। अरे जो मैं कह रहा हूं ये इतना बड़ी काम हुआ है तुझे उसकी खुशी नहीं, तू कपड़े देख रहा है। बाद में भले ही ख्याल आया होगा कि मेरी गलती और नहीं करना चाहिए, लेकिन उस वक्त यदि कोई उस विषय को पलटे तो उसे नहीं सुनना है, उसे वो बर्दाश्त नहीं है। वो तो कहता है मैंने ये बात बताई, उसने वो प्रसन्नता व्यक्त करे, खुशी होवे, धन्यवाद दे रहे सब बात सुन करके, और फिर बाद में जो कुछ कहते बताए तो बताए, चाय पानी की पूछे तो बाद में पूछे, उस वक्त उसे चाय पानी की बात नहीं है। तो मैं इतनी बातें कह करके सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा होता है, तो आत्मज्ञान के क्षेत्र में ऐसा होता है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसमें कौन सी बात अविश्वास करने की है। अब वो चौथे गुण स्थान से होता है, लेकिन उनने वहां नहीं लिखा, वो सदमे साधने के लिए लिखा, तो क्योंकि जो दुनिया को सिद्ध नहीं करना पड़े, या सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं नाजा सारे हम कैसे मान लें, हम तो खूब खाते पीते उठते बैठते गंदा पानी करते देखे और तुम कह दे वो अंदर में धारा चल रही है और बिल्कुल धुआं है नहीं है ना, क्यों हमने तो ये सब काम करते देखा है ऐसा देखा और तुम कह रहे कि करुणा नहीं तुमको समझना भगवान भरोसे पड़ा रहा। ये पहले धारा चली थी पूजनों की नई की वो इसी उद्देश्य से चली थी कि भगवान के स्वरूप की बात तो करें हम, अब स्वरूप की बात करें तो तुम वीतरागी हो सर्वज्ञ हो ये तो मूल स्वरूप है ना, तो उनकी प्रशंसा करें स्तुति करें तो फिर ये नहीं बताएं तो क्या बताएं, उनकी प्रशंसा हम किस बात की करें कि तुम्हारा सफेद खून है इसी बात की करें कि तुम वीतरागी सर्वज्ञ इस बात की करें और तुम जगत के कर्ता धरता नहीं हो, जो उनका असली स्वरूप है ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, और हमारे कुछ विद्वान कहने लगे हैं अभी वही लोग जिनने ये शुरू की धारा कि ऐसा कहीं होता है कि भगवान से ऐसा कहा जाएगा तुम कुछ नहीं करते हो, नहीं भगवान से तो यही कहा जाएगा आप ही नहीं किया जा भाई वो करना चाहिए, ऐसा होता है ना अपन बच्चा आता है माँ बाप के पास तो वो ये कहता है मम्मी तेरी आशीर्वाद से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, मम्मी बेचारी को समझती नहीं है नहीं ना, ऐसा ऐसा भगवान के साथ में अपन को ऐसा ही कहना चाहिए, अब ऐसी उनकी मान्यता हो गई क्या करें, क्यों हो गई कैसे हो गई चाय का प्रभाव पड़ा, लेकिन ये तुम पहले तुमने जो असली भगवान की जो स्वरूप है भगवान की पूजा भक्ति स्तुति में उस स्वरूप बताना चाहिए ना, संबंध भद्र ने तो क्या किया कि भगवान से भगवान का स्वरूप तो थोड़ा बहुत बताया से बताया लेकिन जो उनने कहा सारा द्वादशांग वस्तु का स्वरूप कुछ वही भगवान की स्तुति में वही प्रतिपादन करना शुरू कर दिया, साधवाद की सिद्धि करने लग गए, दस प्रकार के एकांत का निषेध करने लग गए, भावई कांति पदार्था नाम अभावा नाम अपन्नवाद ये बात करने लग गए, तुम कहते गए भगवान से ये नहीं कहो, हम भगवान को बताएंगे कि तुमने क्या कही है, अब तुम उपदेशक हो गए और भगवान श्रोता हो, ये कहां से लाए तर्क, हम अपने गुरु के सामने ये तो कहेंगे कि मेरी समझ में ये बात आ गई तो यही तो कह रहा है भगत कि आज मेरी समझ में आया है, पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म हा और राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा, तो ये भगवान को उपदेश देना हो गया, ये हम भगवान को समझा रहे हैं क्यों, लेकिन जो हमारी समझ विकसित हुई है हम उस समझ को व्यक्त कर रहे हैं ना, जो अंतिम दो पंक्तियां कौन से पेज की 71 पेज की, कर्म चेतना से संन्यास की चर्चा मन वचन काल कृतकालित अनुमोदना और तीनों कालों के सुहासो भावों के कर्तृत्व के त्याग की बात कही थी करके कही थी, और अब कर्म फल चेतना के संन्यास की चर्चा बिना किसी भेदभाव के आठों कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियों के जिसमें तीर्थंकर नामकर्म जैसी पुण्य प्रकृतियां भी शामिल हैं फल के भोक्तृत्व की भावना के त्याग की बात कही जा रही है, मैंने हमारा ध्यान इस पर जाना चाहिए कि जब वो इनकी बात गिनाई तो उन्होंने सभी धान 12 पसेरी, वो मिथ्यात्व नाम का जो इतना खतरनाक प्रकृति है उसके बारे में जो कह रहे वो तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति के बारे में कह रहे वो सबसे खोटी और ये सबसे बढ़िया टॉप से, एक को भी कंसेशन देने को तैयार नहीं है, इस तथ्य की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए ना, हमें जो निकालते हैं कि उन्होंने कहा दुष्प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति तो पाप को कहते हैं, तो उन्होंने कहा दुष्कर्म तो दुष्कर्म तो पाप को कहते हैं, फिर कहे पुण्य पाप कर्म सब दुष्कर्म ही है, पर मैं कुछ करने का भाव दुष्कर्म ही है, चाहे उसकी भला करने की भाव करो चाहे बुरा करने की भाव करो, पर मैं हस्तक्षेप की बात तो हो ही गई ना, इस कलश के तत्काल बाद आचार्य देव उन 148 प्रकृतियों के फल के भोक्तृत्व के संन्यास की बात स्वयं पृथक पृथक रूप से कर रहे हैं जिससे कोई भ्रम न रह जाए, क्यों कर रहे हैं 108 प्रकृतियां, क्योंकि खोल खोल के कह रहे हैं, जिसमें तुम कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी ऐसी कह देते ना कि आदि मैं था तो आदि कर्म प्रकृतियां, तो कोई नहीं गिनने वाला था तीन प्रकृति को, उसे तो बता ही लेते है ना। इसलिए खोल खोल के कह रहे हैं वो। ध्यान रहे यहां तीर्थंकर नाम कर्म के फल के अभोक्तृत्व की भावना मिथ्यात्व के अभोक्तृत्व की भावना के समान ही दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर डाले बिना भा रहे हैं। जिस तरह मिथ्यात्व का कर्तृत्व की भावना भा रहे, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति की भावना भा रहे। अब वो फल की बात है ना, ये वो तो भाई कर्म करने की कर्म फल से इतना ही। तो इसमें क्या पंक्ति आई थी कि इन कर्मों को मेरे बंध भी गए हो भी गए तो हे भगवान बिना भोगे ही खिल जाएं। ऐसा होने वाला नहीं, वो जान रहे हैं, लेकिन अंदर का जो उनका दृढ़ निर्णय है उसको वो व्यक्त कर रहे कि इन कर्मों का फल बिना भोगे ही खिल जाए। हमसे सच बोलो, हमारे अंदर में क्या हमें कई फल मिलेगा कि नहीं, हमें फल मिलेगा कि नहीं। तूने क्या कर लिया है, थोड़ा सा एक बादाम यहां से लेके यहां रख दी है, और वो भी कहां लाया है अपने घर से, मंदिर की मसाली है और मंदिर में से ही रख चला दी है। 1000 रूपये की सामग्री चल रही है, 101 रूपया महीना भर बाद लिखा दिए क्या, और तुम समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा पुण्य बांधने जा रहा हूं। अरे वो तो पूरी ड्यूटी तेरी है। मैं देखो कोई पैसे मीसे देने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सामान्य नैतिकता की बात है नहीं है। जब तू उस क्रिया को ही मान रहा है तो वो करना है। वो पंक्ति मुझे भी याद नहीं आ रही है, तो इसमें से निकाल के बोल सकता हूं कि बिना भोगे ही क्या। हाँ पढ़ो पढ़ो, तुम निकाल के पढ़ो ना, मेरे कहा बताते हो। पेज नंबर 85 निकालो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये खास बातें हैं, इसे मैं तुम्हें निकाल के बता रहा हूं। आगे बढ़ने के लिए करें ना कुछ ना कुछ, एकदम निकालता जाऊं जैसे एकाध पंक्ति तो पढ़ते चलो ना बीच में क्या है। इसके लिए कह रहा हूं, यहां एक प्रश्न है जो 85 पेज पर नीचे। जब मन पर्याय ज्ञान में मन पर्याय ज्ञान है ही नहीं, तो उसे भोगने और न भोगने की बात ही नहीं बनती, फिर भी मैं उसे नहीं भोगता, ऐसा क्यों कहा गया। उत्तर, यहां जो कहा जा रहा है वह ज्ञानी के किसी भी कर्म फल का स्वामित्व तो नहीं है, ज्ञानी की पर्याय की ओर जोर ही नहीं है, एक निजानंद प्रभु आत्मा की ओर जोर है। यह बताने के लिए एक एक कर्म प्रकृति का नाम लेकर निषेध किया गया है। मतलब ऐसे क्यों कह रहा है, अब 148 थोड़ी हर एक की है। अभी तुम गोमर सार में पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसा है ना कि 120 प्रकृतियां बंधने के योग होती हैं। अब 148 में से कितनी रही, 28 होगी, कितनी रही है, वे तो बंधने के योग्य नहीं है। पर 120 जो बंधने के योग्य हैं वो पहले गुणस्थान में 117 बनेंगे, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति आहारक दुख नहीं बनेंगे, यही है ना। अब 117 रहेंगी, कितने 148 में, और 117 हरेक को प्रति समय बनेंगी, ऐसा थोड़ी है। देवगति बनेगी तो नरक गति ऐसे थोड़ी बनती जाएगी साथ साथ, तो ऐसे गिनोगे तो कितनी 75-76 रह जाती हैं। लेकिन बात तो कॉमन चलती है ना थोक के भाव, कि मैं किसी ही को नहीं चाहता हूं, न बांधना न किसी को छोड़ना न किसी को भोगना। अब देवगति के उदय को भोगेगा तो नरगति के उदय को एक साथ कहां भोगेगा है? ये ऐसी बहुत सी प्रकृतियां हैं जो एक साथ संभव नहीं है, तो तो वहां पर हम जो कह रहे हैं 148 की बात वो कॉमन बात है। अब निकालो पेज नंबर 89 अब ये पढ़ो, आज समय हो गया, कल पढ़ेंगे फिर ये कलर। नवासी पेज याद रखना, मैं भूल जाऊंगा।